11:15 हैं। मैं हुसैनी हूं, प्रोग्राम रीस्टार्ट के साथ। पिछले हफ्ते हमने समझाया, यानी रीस्टार्ट के पहले एपिसोड में हमने समझाया कि विज्ञान कभी भी इरफान तक नहीं पहुंच सकता, और इरफान का रास्ता विज्ञान से होकर बिल्कुल नहीं जाता, और दुनिया का कोई भी धर्म इरफान तक नहीं पहुंचता, यानी इरफान का रास्ता धर्म से होकर नहीं जाता। मैं प्यारे सुनने वालों से, उन 50, 60, 70 हज़ार लोगों से जो अभी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, पूछता हूं, उनमें से ज़्यादातर ने मेरा गुड नाइट ईरान देखा है, और इसी वजह से मैं उनसे ज़्यादा आसानी से बात कर सकता हूं, क्योंकि मैं पिछले प्रोग्रामों को फिर से समझाने नहीं जा रहा हूं। लेकिन उन सुनने वालों के लिए जो अभी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि कृपया कम से कम शशकुल हाँ मूर्ख प्रोग्राम का दा विंची एपिसोड ज़रूर सुने, क्योंकि वहाँ मैंने कुछ ऐसा कहा था जो दुनिया के 99% लोगों ने दोबारा नहीं कहा है। ध्यान दें, वहाँ मैंने दा विंची को इस तरह समझाया जैसा दूसरे लोग अलग तरह से समझाते हैं, और मैंने वहाँ समझाया कि मैं पूरी मोनालिसा पेंटिंग को $10 में भी नहीं खरीदूंगा, लेकिन लियोनार्डो दा विंची की दूसरी पेंटिंग्स, क्योंकि उनमें एक इरफानी मिस्टिकल संदेश है, $50 अरब की हैं, और दुनिया मोनालिसा को ज़बरदस्ती फैशन में रखने की कोशिश कर रही है ताकि तुम लियोनार्डो दा विंची के राज को न समझ सको। जो सवाल आपके दिमाग में है वो ये है कि अगर इरफान के रास्ते का धर्म, विज्ञान या साक्षरता से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर कौन सा रास्ता है? रीस्टार्ट प्रोग्राम में सिर्फ 100 एपिसोड 50 एपिसोड 200 एपिसोड में मुझे नहीं पता, हम सिर्फ 3 शेर वर्सेस ऑफ पोएट्री समझाना चाहते हैं। अगर दुनिया के लोग इन 3 शेरों को समझ जाएं, तो गोया उन्होंने सब कुछ समझ लिया। बेशक ऐसा नहीं है कि वे सब कुछ समझ जाएंगे, लेकिन चलिए 2016 में इन 3 शेरों को समझते हैं, और आज से 1000 साल बाद दूसरे लोग आरिफों के कुछ और शेर समझ सकते हैं। 70 राष्ट्रों के इस युद्ध को क्षमा कर, माफ़ कर, क्योंकि उन्होंने हकीकत को न देखा और अफसाने की राह चुन ली। मूल फारसी, जंग ए हफ्ताद ओ दो मिल्लत हमारा उज्र बिने चू न दीदंद हकीकत रह ए अफसाना जदंद। रीस्टार्ट प्रोग्राम इसी शेर को समझाना चाहता है कि 70 राष्ट्रों का युद्ध, यानी दुनिया के 70 राष्ट्र, यानी दुनिया के सभी राष्ट्र, यानी दुनिया के 99% लोग, हाफिज हुक्म देते हुए कहता है कि इस हास्यास्पद और मजाकिया जंग को क्षमा कर दो। क्षमा कर एक हुक्म है, क्योंकि उन्होंने हकीकत को नहीं देखा, यानी 73वें रास्ते को। रीस्टार्ट आपको एक ऐसा रास्ता दिखाने जा रहा है जिसका नाम 73वां रास्ता है। शायद हम इस प्रोग्राम का नाम 73rd पाथ रख सकते थे, लेकिन मुझे अभी यहाँ यह समझाने का ख्याल आया। तो रीस्टार्ट आपको बताना चाहता है कि एक ऐसा रास्ता है जिसे कायनात ने इंसानियत के उभरने से कई लाख साल पहले और इंसानियत के उभरने के कई लाख साल बाद तक खामोश और अनजाना रखने की कोशिश की। क्यों? कायनात में वे कौन से छिपे हुए हाथ हैं जो नहीं चाहते कि तुम और मैं 73वें रास्ते को समझें? यह 73वां रास्ता जिसके बारे में हाफिज बात करता है, याद रखना कि हुसैनी इस प्रोग्राम में बकवास नहीं करता है। अगर इस प्रोग्राम में कुछ लोग बाथरूम जाते हैं और उनके पैर सर के ऊपर आ जाते हैं, पूरी तरह चकरा जाते हैं, तो ये आरिफ लोग ऐसा करते हैं, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो सिर्फ तुम्हारे लिए आरिफों की परिभाषाओं और विचारों को समझाना है। ये बहुत आसान है। अगर तुम अभी सही रास्ता खोजना चाहते हो, तो हाफिज़ की इसी कविता और धर्मों की सोच के मुताबिक तुम्हें 5 लाख साल जीना होगा, और 5 लाख धर्म और किताबें पढ़नी होंगी, और फिर तुम्हें उनके साथ सोना और जागना होगा। ये कोई मजाक नहीं है। मिसाल के तौर पर तुम्हें जाकर बुद्ध को पूरा पढ़ना होगा, फिर उसके साथ सोना और जागना होगा, ताकि देख सको कि ये सही रास्ता है या नहीं। तुम जीते ही कितना हो कि उन सबको पढ़ सको। ये प्रोग्राम इन सारी बातों का पूरा सार लेता है और उसे 100 एपिसोड की सीरीज़ में तुम्हारे सामने पेश करता है। तो तुम साक्षरता और किताबें पढ़कर कभी भी इरफान तक नहीं पहुँचोगे। वजह यह है कि तुम्हारे पास 150,000 किताबें पढ़ने का वक़्त ही नहीं है। तुम 150,000 किताबें कैसे पढ़ने वाले हो? तुम उन्हें कभी नहीं पढ़ सकते, तो तुम अपनी ही जहालत में रह जाओगे। मेरा दोस्ताना सुझाव तुम्हें ये है, इस प्रोग्राम में हुसैनी नहीं बोल रहा है, हुसैनी आरिफों की बात कर रहा है, और आरिफ छिपे हुए हैं, और कुछ नकली आरिफ भी ज़बरदस्ती इन नामों में घुस आए हैं। इसीलिए तुम ऐसी चीज़ों का हवाला देते हो जिनका आरिफों से कोई लेना देना ही नहीं है। आरिफों ने अपनी स्थिति बिल्कुल साफ कर दी है। तुम्हें इस प्रोग्राम को सुनने से पहले बच्चे भी पैदा नहीं करने चाहिए। यानी अगर तुम्हारा कोई बच्चा है तो तुम क्या सोचते हो तुमने क्या पैदा किया है? हमारे बापों की तरह तुमने बस उन्हें एक के बाद एक धड़ाधड़ पैदा कर दिया और उनमें से एक हुसैनी बन गया। लेकिन अगर तुम ये प्रोग्राम सुनते हो तो शायद तुम्हारे बच्चे का डीएनए बदल जाएगा। साफ साफ और मुद्दे की बात कहूँ तो दुनिया के तमाम हुक्मरानों और लोगों के लिए नजात का रास्ता 73वां रास्ता है। बाकी 72 रास्ते एक अस्तबल के रास्ते की तरह हैं जो तुम्हें सिर्फ एक अस्तबल की तरफ ले जाते हैं। तुम कुछ नहीं सीखते। वो तुम्हें एक गाय समझता है जो अस्तबल की तरफ जा रही है, जो तुम्हारा घर है। बाकी 72 रास्ते तुम्हें और मुझे गाय समझने के अलावा हमें अस्तबल दिखाते हैं, लेकिन 73वां रास्ता बिल्कुल वैसा नहीं है। इस प्रोग्राम से इमाम ए ज़माना, मसीहा या क्राइस्ट की वापसी, समानांतर ब्रह्मांड, ध्यान, यूएफओ, आस्था, धर्म और तुम्हारे हजारों दूसरे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आज मैं रूमी की एक कहानी बताना चाहता हूँ और तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि रूमी किन लोगों को गले तक टॉयलेट में घुसेड़ देता है। जो कहानी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वो बहुत गहरी है। इस कहानी में रूमी सभी धर्मों की धज्जियाँ उड़ा देता है, वैज्ञानिकों की धज्जियाँ उड़ा देता है और खुदा को पूरी तरह से चुनौती देता है। इस कहानी में जो मैं बताने जा रहा हूँ, मैंने 20 पंक्तियाँ हटा दी हैं, यानी मैंने 20 शेयर प्रोग्राम 40 और उसके बाद के लिए छोड़ दिए हैं, क्योंकि हम अभी चाहे कितना भी समझा लें, ना तो मैं समझूंगा और ना ही तुम। ध्यान दो, मैंने जानबूझकर 20 शेयर हटा दिए। इससे तुम्हारा और मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, और मैं कोशिश करूँगा कि बाकी शेयरों को जहाँ तक मैं समझता हूँ समझा सकूँ। विज्ञान विकसित हो रहा है, धर्म भी विकसित हो रहा है। विज्ञान तरकक्की कर रहा है, धर्म भी तरकक्की कर रहा है। कायनात में सब कुछ तरकक्की कर रहा है। कायनात फैल रही है आज के लोगों के मुताबिक, या सिकुड़ रही है अतीत के लोगों के मुताबिक। गैलीलियो जैसा एक आरिफ कहता है कि धरती घोल है, लेकिन वे धरती को छपटा कहते हैं और 500-600 सालों तक दुनिया की ऐसी तैसी करते रहते हैं। और एक मजाकिया सोफिस्ट दार्शनिक अरस्तु, जो अब दुनिया की किताबों का प्रतीक है, ये मूर्ख तुम्हें और मुझे 500 साल पीछे धकेल देता है और ऐसी मान्यताएं पेश करता है जो पूरी दुनिया को एक गाय की तरह अस्तबल की ओर ले जाता है। तुम्हारी और मेरी एकमात्र किस्मत अच्छी थी कि इतिहास में प्लेटो का जन्म हुआ। विज्ञान विकसित हो रहा है, धर्म विकसित हो रहा है। कायनात में एकमात्र चीज़ जो विकसित नहीं हो रही है वो है इरफान। सिर्फ इरफान विकास की ओर नहीं बढ़ता। इरफान जिस दिन तुम पैदा हुए थे उस दिन से एक स्थिर और ठहरा हुआ समंदर रहा है। तुम्हें 50 अरब सालों में जो कुछ भी समझने की ज़रूरत है वो तुम 50 अरब साल पहले भी समझ सकते थे। इसका सबूत रूमी की यही किताब मसनवी है कि आने वाले हजारों सालों तक उसके जैसा कोई पैदा नहीं होगा। उस वक़्त रूमी के दिमाग ने दिखा दिया कि हजारों साल बाद भी कोई इरफान के बारे में कुछ नहीं समझ पाएगा। अब कुछ लोग तसव्वुफ़ को इस्लाम से जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि तसव्वुफ़ इस्लाम के बाद आया। इस प्रोग्राम में सूफ़ी या तसव्वुफ़ को समझाया जाएगा। यानी क्यों कुछ लोग 1 लाख साल पुराने सूफ़ी को इस्लाम के बाद या ईसाई धर्म के बाद का बताना चाहते हैं? आखिर ये सूफ़ी है कौन? तसव्वुफ़ क्या है? इरफानी किताबों में सूफ़ी को कैसे परिभाषित किया गया है? 73वां रास्ता क्या है और ये तुम्हें और मुझे कैसे बचा सकता है? क्या 73वां रास्ता वो रास्ता है जिस पर पूरी दुनिया निर्भर है? हाँ। क्या तसव्वुफ़ या इरफान, 1 लाख साल पुराना तसव्वुफ़ या 1 लाख साल पुराना इरफान धर्म के खिलाफ हैं? नहीं, वे धर्म को दंत चिकित्सा की तरह देखते हैं। एक डेंटिस्ट कभी भी एक अच्छा मैकेनिक नहीं हो सकता। एक डेंटिस्ट ब्रेन सर्जन नहीं होता। धर्म इरफान की एक शाखा है जिसके बारे में वे कहते हैं कि ये बुरा नहीं है, ये अच्छा है, इसका इस्तेमाल करो। विज्ञान की तरह विज्ञान भी वैसा ही है। खैर, मुझे लगता है कि एक काम जो मैं अब रीस्टार्ट प्रोग्राम में करूँगा वो है एक कहानी सुनाना, और इस कहानी में हम देखेंगे कि रूमी का नज़रिया एक आरिफ का है। देखो, रूमी के स्रोत आरिफ हैं। जो कोई भी रूमी के ख़िलाफ़ बोलता है वो न सिर्फ तसव्वुफ़ और इरफान में नहीं है, बल्कि वो उस जगह पर है जहाँ 72 राष्ट्र हैं। देखो, मैंने बहुत साफ साफ कहा, अगर तुम सनाई और रूमी को अपने दिमाग से निकाल दो, जो कोई भी रूमी और सनाई के बारे में बुरा बोलता है वो 72 राष्ट्रों में है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो दार्शनिक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो राष्ट्रपति है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने 20 किताबें छापी हैं। ये किताबें या तो सरकार ने उन्हें लिखने के लिए पैसे दिए, या उन्होंने दूसरों की किताबों को तोड़ मरोड़ डिस्टॉर्टेड दिया। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये क्या है। मेरे पास जो स्रोत हैं वे सिर्फ आरिफों के हैं, प्लेटो और गैलेन से लेकर। जो कहानी मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ वो एक सूफ़ी की ज़बान से है, यानी रूमी, मौलाना, तसव्वुफ़ के मकाम तक पहुँचता है। हमारे पास बहुत कम लोग हैं जो जब हम इरफान की रैंकिंग तक पहुँचते हैं तो आरिफ बनते हैं। आरिफ के बाद एक शब्द आता है जिसे सूफ़ी कहते हैं। सूफ़ी के बाद, जो शायद कायनात में कुछ ही हों, ये इंसान ए कामिल शब्द तक जाता है। अब जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो अत्तार कहता है। अत्तार कहता है कि इस कहानी का चरम एक इंसान है जिसे इंसाने कामिल कहते हैं, जिसका मैंने पहले एपिसोड में जिक्र किया था, एक शब्द जिसे इस्म कहते हैं। और ये इस्म यही इंसाने कामिल है जिसे मैं बाद में आरिफों के स्रोतों के साथ समझाऊंगा, ताकि तुम देख सको कि इंसाने कामिल का क्या मतलब है, सूफ़ी का क्या मतलब है, इरफान का क्या मतलब है और आरिफ का क्या मतलब है। और जाहिद और आबिद मुसलमानों की आशिकाना सूफ़ी इरफान में कोई जगह नहीं है। जो कहानी मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ वो हमारे प्यारे मौलाना जलालुद्दीन की है। लेकिन ये कहानी ताकि तुम समझ सको कि सूफ़ी का ताल्लुक पिछले कुछ सालों से नहीं है, मैं बस एक छोटा सा नोट बता दूं। जनाब, रूमी से पहले सनाई ने यह कहानी सुनाई थी। खैर, ये तो जाहिर है, और रूमी खुद कहते हैं हम सनाई और अत्तार के बाद आए। तो ये साफ़ है कि ये कहानी जो रूमी अब समझा रहे हैं वो सनाई ने भी कही थी। खैर, ये ठीक है। रूमी खुद कहता है कि इन 72 राष्ट्रों को छोड़ दो, जब मैं बोलता हूँ तो मेरा इश्क सनाई अत्तार है। लेकिन इस कहानी की खूबसूरती ये है कि ये कहानी हमारे पास बौद्ध धर्म में भी है, यानी सूफी बौद्ध धर्म में, बुद्ध का धर्म नहीं, क्योंकि बुद्ध के धर्म का खुद बुद्ध से कोई लेना देना नहीं है। ये कहानी हमारे पास हिंदू धर्म में भी है, प्लेटो ने भी ये कहानी सुनाई थी। देखो, एक कहानी जो मैं रूमी की सुनाना चाहता हूँ, देखो तुम कितने सैकड़ों साल पीछे जाते हो, तुम देखते हो कि दूसरे लोगों ने भी ये कही है। यानी किताब में, माफ़ करना, वेद या वाद नज़रिए में ये कही गई है, जैन या जैन धर्म की रिवायत में ये कही गई है, जैन या जैन धर्म में जो हिंदू धर्म से एक और नज़रिया है, ये बुद्ध की किताब में कही गई है, ये इस्लामी दायरे के तसव्वुफ़ में भी कही गई है। यानी इस तरह के नज़रिए तुम कोई भी सिफत जोड़कर कह सकते हो कि ये इस्लामी सूफ़ी है, ये ईसाई सूफ़ी है। नहीं, सूफ़ी सूफ़ी होता है, इंसान एक कामिल इंसान एक कामिल होता है। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि ये किस धर्म के लिए है। धर्म असल में सूफी का एक हिस्सा है। जैसे मिसाल के तौर पर ये उसके दाहिने हाथ का नाखून है और तुम उसे उससे जोड़ना चाहते हो। तो एक हम ये नतीजा निकालते हैं कि ये कहानी पुराने ज़माने में मौजूद थी। अरे यार, ध्यान दो, हे मैन, पे अटेंशन, ये कहानी उस सूफ़ी की है जो पुराने ज़माने में मौजूद था। ये खुद इस बात का सबूत है कि रूमी प्लेटो की पिछली बातों को, क्योंकि उस ज़माने के लोग बेवकूफ़ थे और समझते नहीं थे, एक दूसरी ज़बान में पेश कर रहा है ताकि वे शायद फिर से समझ जाएं। सनाई ने भी यही किया, प्लेटो ने भी यही किया, बुद्ध ने भी यही किया। उन्होंने बार 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 कहा और कोई नहीं समझा। लेकिन रूमी और दूसरों के बीच फ़र्क ये है कि जब रूमी किसी को टॉयलेट में फेंकता, थ्रो समवन इन द टॉयलेट, तो वो वाकई अपना पैर नहीं हटाता, दूसरे लोग हटा लेते हैं ताकि वो एक सांस ले सकें। लेकिन जब रूमी हमला करता है तो वो इतनी खूबसूरती से हमला करता है कि अगर दुनिया के लोग जमा हो जाए तो भी वे टॉयलेट में पड़े उस शख्स के सर से रूमी का पैर नहीं उठा सकते। ये चालें बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत ज़बरदस्त चालें।
बिना किसी और बात के हम उस नज़्म पर चलते हैं जिसे मैं रूमी से पढ़ना चाहता हूं, और देखते हैं कि जब तुम पूरा इंटरनेट खंगालते हो तो वे सिर्फ पहले 7 या 8 शेर ही क्यों समझाना चाहते हैं। देखो, रूमी की कहानी के पहले 10 शेर बुद्ध और हिंदुओं और सनाई और अत्तार और प्लेटो की कहानी समझाते हैं। 10वें शेर से लेकर 30वें 40वें तक रूमी असल में जिसे भी देखता है उसे टॉयलेट में घुसेड़ देता है। अब मैं इसे इस तरह समझाना चाहता हूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? शेर 1 से 10 की तशरीह इतनी ताकतवर और सीधी सपाट एक जैसी है कि ये किसी शक की गुंजाइश नहीं छोड़ती। कहानी कुछ यूं है और उनकी पुरानी किताबों में भी ऐसी ही है। वे मिसाल के तौर पर कहते थे कि एक बादशाह एक हाथी लाया। सनाई ने मिसाल के तौर पर कहा कि एक बादशाह शहर में एक हाथी लाया, लेकिन सनाई और बुद्ध और हिंदुओं ने उस शहर के लोगों को अंधा माना। लेकिन रूमी की कहानी में, बहुत ध्यान से सुनना, पिछली कहानियों में जो इस हाथी को समझाती थी, हाथी की कहानी, एक शहर के लोगों को अंधा माना गया था, यानी उन्होंने कहा कि लोग अंधे हैं। लेकिन रूमी इसे एक कदम आगे ले जाता है और कहता है, ये मत सोचो कि लोग बेवकूफ़ी से अंधे हैं, आँखों वाले लोग और भी ज़्यादा बेवकूफ़ हैं। और वो कहानी कहने के अंदाज को पूरी तरह बदल देता है और शहर के लोगों को जानकार आँखों वाला मानता है और समझाता है। बहुत से लोग इस कहानी को खुदा जैसी कल्पनाओं से जोड़ना पसंद करते हैं ताकि हम मामले की तह तक ना पहुंच पाएं, लेकिन रूमी की कहानी धर्म के विज्ञान और स्वयं खुदा के वजूद पर एक सीधा एक तरफा हमला है। हम सब मिलकर मौलाना जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी बल्खी के ख्यालों को सुनते हैं। वो कहता है, एक का हाथ उसके कान तक पहुंचा, मुझे यहां से पढ़ने दो। एक हाथी एक अंधेरे घर में था, फिल अंदर खाना है तारीख बूद, तो घर अंधेरा था यानी कोई रोशनी नहीं थी, कोई अंधा नहीं था, बस रोशनी नहीं थी। एक हाथी एक अंधेरे घर में था, हिंदू उसे दिखाने के लिए लाए थे, उसे देखने के लिए बहुत से लोग उस अंधेरे में गए, हर एक। वो कहता है कि वे उस घर में एक हाथी लाए थे, अब वो कहता है कि वे दिखाने के लिए लाए थे, यानी वे कुछ लाए थे। वो अभी ये नहीं कहना चाहता कि ये हाथी है, वो अपनी कला दिखा रहा है। वो कहता है कि वे कुछ लाए थे, ये कुछ ही अहम है, और लोग उसे देखने जा रहे थे, इस घर में खुद को ठूंस रहे थे ये देखने के लिए कि ये क्या चीज़ है जो आई है, और बदकिस्मती ये है कि अंधेरा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। चूंकि उसे आँख से देखना मुमकिन नहीं था, उस अंधेरे में हर कोई उसे अपनी हथेली से टटोलता। वो कहता है, क्योंकि देखने के लिए रोशनी नहीं थी और देखना मुमकिन नहीं था, अब हथेली काम आती है, हाथ की हथेली, ध्यान दो। वो कह रहा है, क्योंकि उनके पास समझ नहीं थी, चूंकि कुछ भी समझने के लिए रोशनी नहीं थी, अब हाथ की हथेली उनकी मदद को आती है। एक की हथेली उसकी सूंड पर पड़ी, उसने कहा, ये जानवर तो एक परनाले जैसा है। उसने कहा, एक आदमी ने हाथी की सूंड को छुआ और कहा, ये माफ़ करना, एक परनाला है। दूसरे का हाथ उसके कान तक पहुंचा, जो उसे एक पंखे जैसा लगा। दूसरे ने हाथी के कान को छुआ और कहा, अबे बकवास मत कर, गंदी चीज़, मेरे लिए धर्म बघार रहा है, बेवकूफ़ ना समझ, तू मेरे लिए एक धर्म पैदा कर रहा है, कह रहा है ये परनाला है, घटिया ना समझ, गंदी चीज़ नहीं, ये एक पंखा है, मैंने अपनी हथेली से चेक किया है। अब बगल वाला दूसरे से कहता है, ये पंखा है, तू झूठ क्यों बोल रहा है, तू लोगों को गुमराह क्यों कर रहा है, उन्हें भ्रष्ट कर रहा है, गंदी चीज़। और फिर वो उस इतिहास में एक आईसीएस जैसी हुकूमत बना लेता है। एक और जब उसकी हथेली उसके पैर से लगी, बोला, मैंने हाथी का आकार देखा, ये एक खंभे जैसा है। उसने कहा, इन दो लोगों के धर्म बकवास हैं, ये गंदी चीज़ें झूठ बोल रही हैं, ये एक खंभा है, ये एक स्तंभ है। उसने कहा, ये वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा वे कह रहे हैं, ये क्या फलसफा और दीन है जो तुम लोगों के दिमाग में ठूंस रहे हो और लोगों को अंधविश्वास की तरफ धकेल रहे हो। मैंने इसे अपनी हथेली से छुआ और समझा कि ये एक खंभा है, क्योंकि उसने उसके पैरों को छुआ था। एक और ने अपना हाथ उसकी पीठ पर रखा और कहा, ये हाथी तो वाकई एक तख्त जैसा है। उस वाले ने कहा, देखो हम इरफान में हैं, हम इरफान समझते हैं, ये सब बेवकूफ़ झूठ बोल रहे हैं, ये परनाला नहीं है, नहीं ये, माफ़ करना,
खंभा है, ये इनमें से कुछ नहीं है, ये एक तख्त है। इस तरह हर एक जिस हिस्से तक वो पहुंचा, उसने वैसा ही समझा जैसा उसने सुना। मुख्तसर ये कि वो कहता है कि धर्म और ये लोग इस हाथी के इर्द गिर्द जमा हो गए और इस हाथी पर जहाँ भी उन्होंने छुआ, उन्होंने लोगों के लिए एक नया हुक्म, एक नई विचारधारा, एक नई तफसीर की किताब जारी कर दी, ये कहते हुए हमने इसे अपनी आँखों से देखा है और ये हाथी जिसकी तुम बात करते हो वो वही है जो हम समझा रहे हैं, का नाम दिया इसने अलिफ का। वो कहता है कि उनके बीच इख्तिलाफ बढ़ गया और धर्मों और आस्थाओं ने माफ़ करना, हर एक ने उसे एक नाम दे दिया। एक ने कहा ये अलिफ है, दूसरे ने कहा ये दाल है। अब रूमी समझाता है, अगर हर एक के हाथ में एक शमा होती तो उनकी बातों से ये मतभेद मिट गया होता। वो कहता है कि जो लोग इस हाथी का मुआयना कर रहे थे, अगर हमने बस इन बेवकूफ़ों के हाथ में एक शमा दे दी होती तो ये सारे मतभेद पूरी तरह मिट गए होते। यानी 72 राष्ट्रों का युद्ध तीसरे रास्ते के ख़िलाफ़, जो कि 73वां है, यानी वो शमा ही वो 73वां रास्ता है जिसके बारे में हाफिज़ बात करता है। अगर हमने एक शमा दी होती तो हम हाथी का पूरा जिस्म देख लेते। हवास की आँख बिल्कुल हाथ की हथेली जैसी है, हथेली की रसाई उस पूरे हाथी तक नहीं होती। वो कहता है तुम्हारी पाँचों इंद्रियाँ। अब यहाँ से रूमी देखो, ध्यान दो, यहाँ तक कहानी तमाम धर्मों और उनके लिए थी जिन्होंने इसे बुद्ध और प्लेटो के लिए समझाया। लेकिन देखो, यहाँ से रूमी हमला शुरू करता है। वो कहता है तुम्हारी पांचों इंद्रियाँ तुम्हारी हथेली हैं, तुम सिर्फ उतना ही समझते हो जितनी तुम्हारी हथेली, यानी तुम्हारी चेतना बस इतनी एक बालिश्त ही है, तुम कुछ नहीं समझते, और तुम्हारी पाँचों इंद्रियाँ उस अंधेरे में इस चीज़ को समझने में तुम्हारी मदद नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ रोशनी ही उस मखलूक़ का असली चेहरा दिखा सकती है। समंदर की आँख और चीज़ है और झाग और चीज़, झाग को छोड़ दे और आँख से समंदर को देख। यहाँ वो आधिकारिक तौर पर कहानी को एक लहर से दूसरी लहर पर ले जाना शुरू करता है, जैसे किसी सिम्फनी के सामंजस्य की तरह, बीथोवेन की सिम्फनी की तरह। वो कहता है कि तुम समंदर का झाग देखते हो, तुम समंदर पर झाग देखते हो, ऐ बेवकूफ़ ये समंदर नहीं है, समंदर अंदर है। खुदा की कसम, तुम जो किनारे से देख रहे हो वो झाग है, वो समंदर नहीं है। अब झाग की हरकत दिन रात समंदर से है, तू झाग को देखता है पर समंदर को नहीं, क्या अजब बात है। हम कश्तियों की तरह एक दूसरे से टकरा रहे हैं, हम अंधी आँखों वाले ब्लाइंड आइड हैं, हालांकि साफ पानी में हैं। वो कहता है तुम और मैं उन अंधे लोगों की तरह हैं जो पानी पर हैं लेकिन पानी को नहीं देखते। ऐ तू जो जिस्म की कश्ती में सो गया है, तूने पानी तो देख लिया, अब पानी के अंदर जो पानी है उसे देख। यहाँ तक इंटरनेट पर है, इसके आगे का इंटरनेट पर नहीं है। धीरे धीरे यहाँ से रूमी के नज़रिए से धर्म सवालों के घेरे में आता है। ऐसा नहीं कि वो कहता है कि धर्म बुरा है, वो कहता है कि धर्म को हम तक पहुँचने के लिए उसे अपना रास्ता बदलना होगा और हमारे रास्ते पर आना होगा। हमला यहाँ से शुरू होता है, यानी अगला शेर। यहाँ से रूमी आधिकारिक तौर पर उन चीज़ों पर हमला करता है जो लोगों की मान्यताएं हैं। हर कोई अब से, मेरी राय में इस मिनट से, हर कोई रूमी को गाली दे सकता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पानी का एक पानी है जो उसे बहाता है, रूह की एक रूह है जो उसे पुकारती है। मूसा और ईसा कहाँ थे जब सूरज मखलूकन प्राणियों को पानी दे रहा था? उसने कहा मूसा। जब मूसा और ईसा के नाम पिछले शेरों के बाद आते हैं तो ये ठीक ठीक इशारा कर रहा है कि हाथी की कहानी का मौजू धर्म के बारे में है। ये आधिकारिक तौर पर धर्म के बारे में है, खुदा की कसम ये और कुछ नहीं है। वो कहता है जनाब मूसा और जनाब ईसा, वे कहाँ थे जब सूरज मखलूकों को पानी दे रहा था? वे तो अभी पैदा भी नहीं हुए थे। वो इरफान समझा रहा है, यानी वो कहना चाहता है कि मूसा और ईसा से पहले ये खूबसूरत सूरज ऊपर आसमान में था, आदम और हव्वा, वो मौजू को और आगे ले जाता है, वो धर्मों को सीधे कहानी के मोड़ या चरम बिंदु पर ले जाता है। आदम और हव्वा उस वक़्त कहाँ थे जब खुदा ने इस कमान पर यह चिल्ला चढ़ाया था? वो कहता है आदम और हव्वा जिनकी तुम बात करते हो, ये चिल्ला जो खुदा ने इस कायनात में बनाया। अब रूमी का खुदा मेरा और तुम्हारा खुदा नहीं, मेरा और तुम्हारा खुदा बेकार है, एक बेवकूफ़ भोला भाला
कातिल लास वेगास स्टाइल चूमने चाटने वाला पीने वाला एंटी ये कुछ और है। हम रूमी के खुदा की बात कर रहे हैं। वो कहता है आदम और हव्वा कहाँ थे जब खुदा ने इस कमान पर यह चिल्ला चढ़ाया था। पूरी कायनात इंसानियत लड़के और लड़कियां जो प्रोग्राम सुन रहे हैं प्लीज़ इन सभी धर्मों से तुम अपने पूरे वजूद के साथ आदम और हव्वा से आए हो। आदम और हव्वा से पहले तुम्हारी माँ की कसम ये सूरज मौजूद था। वो विज्ञान के दायरे को धार्मिक नज़रिए के मौजू में ले आता है। यह बात अब मामले को साफ करने के लिए वो कहता है ये बात भी अधूरी और अबतर है। वो बात जो अधूरी नहीं है वो राज है, या इसे सिर भी पढ़ा जा सकता है। वो कहता है ये बात भी अधूरी और अबतर है, यानी सभी धर्मों की बातें कटी हुई हैं। अबतर का मतलब है दुम कटा, यानी ये कहीं छूट गई है, यानी हम इसे नहीं समझते। ये एक जगह से शुरू होकर दूसरी जगह ख़त्म नहीं होती। बात कटी हुई है, ये बात अधूरी है। ये चीज़ें जो वे कहते हैं, जिन धर्मों की वे बात करते हैं, वे सब अधूरी हैं। और वो बात जो अधूरी नहीं है वो राज्य है। अगर वो कहता है कि ये राज्य है तो इसका मतलब है कि ये अक्ल की बात है, यानी वो कह रहा है कि अगर तुम अपनी अक्ल से ध्यान दोगे तो तुम देखोगे कि उनकी सारी बातें अधूरी हैं। अगर वो इसके बारे में बोले तो तेरा पैर फिसल जाएगा, और अगर वो इसके बारे में कुछ न कहे तो तुझ पर अफसोस है। वो कहता है अगर वो बोले तो तुम्हारा पैर फिसल जाएगा, अगर वो नहीं बोलता तो तुम्हारा अफसोस शुरू होता है, यानी जो मैंने अभी कहा उससे तुम गाली दोगे, तुम्हें देनी ही पड़ेगी, उसका यही मतलब है। ये मत कहो अफसोस अफसोस हुसैनी, ऐसा मत कहो रूमी। हुसैनी कुछ नहीं कह रहा है, वो उनका कॉल नकल कर रहा है। पैर बंधे एक पौधे की तरह अब वो समझाता है। वो कहता है तुम यानी धर्म, मैं अभी भी धर्मों के बारे में बात कर रहा हूँ। वो कहता है धर्म कैसे हैं। अब देखो वो कितनी खूबसूरती से धर्मों को समझाता है। वो कहता है वह ज़मीन में एक पौधे की तरह पाबस्ता पैर बंधे तू एक बिला यकीन हवा पर अपना सर हिलाता है। वो कहता है कि धर्म एक छोटे बेवकूफ़ पौधे की तरह हैं, जैसे एक मूली जो ज़मीन से निकलती है। वो कहता है कि उनकी कोई जड़ें नहीं हैं, कुछ भी ताकतवर नहीं है। वो कहता है कि वे एक पौधे की तरह पाबस्ता हैं जिनके पैर ज़मीन में बंधे हैं और उनके सर एक हवा के झोंके से दाएं बाएं हिलते हैं। तू एक बिला यकीन हवा पर अपना सर हिलाता है, यानी उनमें कोई यकीन नहीं है, ये सब इतिहास है, यानी उन्होंने लोगों से एक कहानी सुनी है। बिना अंदर के ईसा को, ईसा के विचारों को समझे, उन्होंने इसे खुद नहीं लिखा है लेकिन वे इसके बारे में बात करते हैं। रूमी यही कहता है, उन्होंने मोहम्मद के विचार लिखे और उनके बारे में बात की, यानी वे खुद मोहम्मद के बारे में कुछ नहीं जानते। क्यों? क्योंकि वे बस एक पौधे की तरह हैं, क्योंकि वे बहुत छोटे हैं और उनके सर किसी भी हवा से हिल जाते हैं और उनके पास कोई यकीन नहीं है। लेकिन तेरे पास हिलने के लिए पैर नहीं हैं जब तक कि तू इस मिट्टी से अपने पैर उखाड़ न ले। वो कहता है कि उनके पास जगह बदलने के लिए पैर भी नहीं हैं, वो हिलना बीते हुए कल या कॉल के बारे में नहीं है, लेकिन वो कहता है कि इस पौधे को इरफान समझने के लिए उसे जड़ से बाहर आना होगा। ध्यान दो जुमले पर, ध्यान दो। वो कहता है कि धर्मों को, क्योंकि हमने अभी तक विज्ञान पर हमला नहीं किया है, हम धर्मों की बात कर रहे हैं। वो कहता है क्योंकि धर्म इस पौधे की तरह हैं जो बेवकूफ़ी से हर हवा के साथ अपना सर हिलाता है, जैसे कोई जो हाफिज़ को सुनता है और सर हिलाता है, वाह वाह, लेकिन समझता कुछ नहीं, बस अपना सर हिलाता है। रूमी कहता है कि धर्म, माफ़ करना, ज़मीन में एक पौधे की तरह हैं जो हर हवा के साथ झूमते हैं, और इरफान को समझने के लिए इस पौधे को जड़ से बाहर आना होगा। जब तक तुम वहाँ हो, हवा के साथ सर हिला रहे हो, कोई यकीन नहीं है। यकीन है जड़ से बाहर आना। जब पौधा जड़ से बाहर आता है तो उसे यकीन मिलता है। ध्यान दो, तू अपने पैर कैसे उखाड़ सकता है जब तेरी ज़िंदगी ही इस मिट्टी से है, तेरी इस ज़िंदगी का रास्ता बहुत मुश्किल है। वो कहता है कि तुम्हारे लिए पौधे इरफान समझने के लिए तुम्हें ज़मीन से बाहर आना होगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी और वजूद इस मिट्टी पर निर्भर है जो तुम्हारे पैरों के नीचे है, और तुम्हारे लिए इस मामले को समझने के लिए मिट्टी से बाहर आना बहुत मुश्किल है। और जब तक तुम उस मिट्टी में हो, तुम कीचड़ में फंसे एक गद्दे की तरह हो। ये एक सीधी एक समान तशरीह है। जब तुझे हक से ज़िंदगी मिलेगी ऐ चेहरे, तो एक रात तू मिट्टी से आज़ाद होकर चला जाएगा। वो कहता है कि अगर तुम समझ गए कि ज़िंदगी क्या है, तो तुम्हें एक हक से, एक वजूद से, एक इंसान कामिल से ज़िंदगी पानी होगी, ताकि तुम बिना मिट्टी के जी सको, ये समझने के लिए कि ज़िंदगी का मतलब क्या है। जब तक तुम मिट्टी में हो, तुम मिट्टी में हो। समझने के लिए तुम्हें बाहर आना समझना होगा, यानी गणित में पुराने निर्देशांकों से नए निर्देशांकों पर जाने के लिए एक अल्फा एक बीटा की ज़रूरत होती है। ये देखने के लिए कि समंदर क्या है, तुम्हें अल्फा बीटा नाम का एक ऑक्सीजन टैंक अपनी पीठ पर बांधना होगा और 4 घंटे समंदर के नीचे देखना होगा। समंदर के अंदर देखने के लिए तुम्हें अपनी सांस रोकनी होगी, तुम्हें सांस की इस मिट्टी से बाहर आना होगा, तुम्हें सिर्फ अपनी सांस पर निर्भर नहीं रहना होगा। एक जिस्म, एक चीज़, एक मजबूत इरफानी खजाना तुम्हें किसी से मिलना चाहिए ताकि तुम पानी में टिक सको, वरना जब तक तुम सूखी ज़मीन पर खड़े होकर समंदर को देखते हो, तुम्हें झाग दिखाई देता है। लहरें एक दूसरे से टकराती हैं, तुम्हें सिर्फ झाग दिखाई देता है। तुम समंदर में कुछ देखना चाहते हो, 70 राष्ट्रों का युद्ध। अगर तुम देखना चाहते हो तो तुम्हें एक ऑक्सीजन टैंक बांधना होगा और तुम्हें इरफान में डूबना होगा, ताकि तुम इरफान में मेरे साथ, रूमी के साथ, एक ऑक्सीजन टैंक के साथ आ सको। तो तुम इरफान के बारे में क्या कह रहे हो? तुम 1-2 इंच की जड़ वाले पौधे जो ज़मीन में हैं, हवा से हिल रहे हो और तुम बातें करते हो। यहाँ से आगे वो कहता है, अब मैंने फिर से कुछ शेर हटा दिए हैं क्योंकि उन्हें समझना मुश्किल है। हमें इसे किसी और वक़्त बात करने के लिए छोड़ना होगा। जैसे तू अदम से वजूद में आया, चल बता तू कैसे आया, तू नशे में ड्रंक आया। वो कहता है, अपने अतीत को देखो, तुमने इस धरती पर कैसे कदम रखा, इसे देखो। तुम कहाँ देख रहे हो? कि मोहम्मद ने ऐसा वैसा कहा। ठीक है, क्या तुमने मोहम्मद को देखा है? उसकी आंखें किस रंग की थीं? उसकी भौहें कैसी थीं? उसके ख्याल कैसे थे? तुम्हें क्या मतलब कि वो रात को सोते वक्त क्या करता था? तुमने उसे 4 घंटे मस्जिद में देखा। वो बेडरूम में कैसा था? क्या वो नाचता था? क्या वो नशे में था? क्या वो मज़े कर रहा था? क्या वो छुपकर शराब पीता था या नहीं? तुम मोहम्मद के बारे में क्या जानते हो? तुम ईसा के बारे में क्या जानते हो? तुम मूसा के बारे में क्या जानते हो? सिवाय एक इतिहास के जो एक काफिर भी जानता है, अगर वो अभी ईसा के बारे में खोजेगा तो वो तुमसे ज़्यादा समझ जाएगा। अब हिकमत की बात खा, जो एक छुपा हुआ नूर बन गई है, ऐ तू जो बेपर्दा नूर के लिए बंद है। अब क्या? ताकि तू काबिल बन जाए, ऐ जान, नूर के लिए, ताकि तू पर्दे में छुपी चीज़ को बिना पर्दे के देख सके। एक सितारे की तरह तू आसमान पर सफ़र करेगा, नहीं, बिना आसमान के तू कैसे के बिना सफ़र करेगा। अब वो कहता है कि अफसोस की बात है कि तुम इतने अजीम हो फिर भी बेकार की बातों के कैदी हो। अगर तुम मेरी बातें सुनो तो मैं तुम्हें पूरी कायनात दिखा दूंगा। समंदर कुछ नहीं है, मिट्टी कुछ नहीं है, मैं तुम्हें ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा कि तुम हैरान रह जाओगे। जैसे तू अदम से वजूद में आया, चल बता तू कैसे आया, तू नशे में आया, तुझे आने के तरीके याद नहीं है, लेकिन हम तुझे एक राज सुनाएंगे। वो कहता है कि तुम भूल गए हो, तुम कहाँ से आए, तुम्हारे आने का मकसद क्या था। मैं तुम्हें एक राज बताना चाहता हूँ जो तुम्हें हैरान कर देगा, और कहानी यहाँ से शुरू होती है। वो कहता है, मैं तुम्हें रास्ता सिखाना चाहता हूँ, अपनी अक़ल को छोड़ दे और फिर अक्लमंद बन। वो कहता है कि मेरी बातें समझने के लिए तुम्हें अपनी अक़ल को खाली करना होगा और फिर अक्लमंद बनना होगा। तुम्हें अब ध्यान देना होगा, ये अक्ल जो तुम्हारे पास है ये मेरे किसी काम की नहीं है। अपनी अक्ल को छोड़ दे और फिर अक्लमंद बन, अपने कान बंद कर लें और फिर सुन। वो कहता है कि अब जब तुम मेरी बातें समझना चाहते हो तो तुम्हें अपने कान बंद करने होंगे और फिर सुनना होगा। नहीं, मैं तुझे नहीं बताऊंगा क्योंकि तू अभी कच्चा है, रूमी हुसैनी से कहता है। वो कहता है, हुसैनी, मैं तुझे नहीं बता सकता क्योंकि तू कच्चा है, तू बाहर में है, तूने तम्मुज, गर्मी की तपन नहीं देखा है। वो कहता है कि तुम बाहर हो, तुमने तम्मुज नहीं देखा है, तुमने सर्दी नहीं देखी है, तुमने पतझड़ नहीं देखा है, तुमने गर्मी नहीं देखी है, तुम बाहर हो, तुम अपने लिए बाहर के मौसम में हो। कच्चे फल शाख को मजबूती से पकड़े रहते हैं क्योंकि कच्चेपन में महल मुनासिब नहीं है। वो इसे कितनी खूबसूरती से समझाता है। वो कहता है, क्योंकि फल जब तक वे कच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, वे पेड़ों पर शाखों को बहुत बड़ा देखते हैं। वे कहते हैं, वाह, इस शाख ने मुझे थाम रखा है, या अल्लाह, ये शाख मेरा खुदा है। कच्चा फल पेड़ की शाख को अपना खुदा समझता है। वो कहता है, तुम देखते हो मैं यहाँ क्यों हूँ? इसीलिए नहीं कि मैं मजहबी यकीन तक पहुँचा, मैंने विज्ञान में तरक्की की और इस पेड़ ने मुझे थाम लिया तो मैं समझ गया, कच्चा फल कहता है। जब वो पक गया और मीठा रस भरा हो गया तो उसने शाखों को ढीला पकड़ लिया। वो कहता है कि फल का बस थोड़ा सा पक जाना काफ़ी है। जब वो पक जाता है तो धीरे धीरे वो भारी हो जाता है, तब वो देखता है कि शाखा हिल रही है। शायद ये मेरा खुदा नहीं है, शायद मैं इससे जुड़ा नहीं हूँ, शायद मैं पक गया हूँ, मैं भारी क्यों हो गया हूँ, मैंने ऐसा क्या किया कि मैं भारी हो गया? रूमी कहता है, तुम सयाने हो गए हो। जब उस कस्मत से उसका मुंह मीठा हो गया तो दुनिया की बादशाहत उस शख्स के लिए सर्द हो गई। वो कहता है कि फल अभी भी नहीं जानता कि उसमें विटामिन भी हैं। वो अभी भी नहीं जानता कि छिलके के साथ वो कब्ज करता है, बिना छिलके के दस्त लाता है। वो नहीं जानता कि वो एक सेब है और तुम उसे तोड़ो या ना तोड़ो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, एक फर्ड इंजीनियर के मुताबिक। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब तू ख्वाब में जाता है, तू खुद के पास से खुद के पास, फ्रॉम बिफोर योर सेल्फ टू बिफोर योर सेल्फ जाता है। मैंने फिर से तीन शेर हटा दिए। वो कहता है, क्या तुम जानते हो तुम कौन हो? तुम जागते हुए इतने बेखबर हो, तुम एक ख्वाब में हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब तू ख्वाब में जाता है, जब तुम सोने जाते हो, तुम आखिरकार खुद के पास जाते हो। तुम जानते हो तुम बहुत बदनसीब हो जब तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा खुद कहाँ है। तुम्हारा खुद जब तुम सोते हो, तुम्हारा खुद खुद के पास जाता है। उस वक़्त जब तुम सोए होते हो, तुम आखिरकार समझते हो, क्योंकि उस वक़्त तुम खुद को समझते हो। जब तक तुम जागे हो, तुम खुद के साथ नहीं हो, तुम खुद से बाहर हो। जब तुम सोते हो, तुम खुद के अंदर जाते हो। तो जब तुम जागे होते हो, तुम्हारी ज़िंदगी बकवास है, ये एक ख्वाब है, ये नींद है। जब तुम सोते हो, तुम्हारी ज़िंदगी बेदारी है। तू खुद से सुनता है और तसव्वुर करता है कि फलां ने वो राज तुझे ख्वाब में बताया। वो कहता है कि तुम अब अपने अंदर कह सकते हो, तू एक नहीं है ऐ अच्छे दोस्त, बल्कि एक आसमान और एक गहरा समंदर है। वो कहता है, तुम एक नहीं हो। अगर तुम अपने अंदर जाओगे तो तुम समझोगे कि तुम एक नहीं हो, तुम एक गहरे समंदर और एक बहुत ऊंचे आसमान हो। 11:52 है, मेरे पास शायद एक मिनट बचा है। दो पन्ने बचे थे जो बहुत अहम थे। हाँ, रीस्टार्ट आपको 73वां रास्ता दिखाता है। इतिहास में पहली बार रीस्टार्ट आपको 73वां रास्ता दिखाता है, महान आरिफों, उन आदमियों जो बहुत अजीम हैं, के नज़रिए के सार के साथ। रेडियो पस्तो फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारी फ़ाइलों को शेयर करें अगर आपको ये प्रोग्राम वाकई पसंद है। और बहरहाल मैं आप सभी प्यारे सुनने वालों से माफ़ी चाहता हूँ। अगले हफ्ते मैं बाकी हिस्सा समझाऊँगा और इंशाल्लाह खुदा की उम्मीद के साथ हम विज्ञान की धज्जियाँ उड़ा, ब्लो साइंस स्काई हाई देंगे, ये देखने के लिए कि आरिफ विज्ञान और दूसरी चीज़ों के बारे में क्या कहते हैं।